15 सुकून के पल। ध्रुव की पकड़ अब वंशिका के गले पर और मजबूत हो चुकी थी। इसी घबराहट और जद्दोजहद में वंशिका के गले में बंधा हुआ बॉडी बिल्डर जैसा मस्कुलर ड्रेस, जिसमें उसने सिक्स पैक एब्स पहन रखे थे, ढीला पड़ गया और वो ध्रुव के हाथ पर गिर पड़ा। जैसे ही ये गिरा, ध्रुव को हल्का सा झटका सा लगा। उसके सामने वंशिका के असली खूबसूरत बाल लहराते हुए नजर आए। ध्रुव एकदम दंग रह गया और उसका दिमाग भक से उड़ गया। ध्रुव कभी उसकी आंखों में देखता, कभी उसके चेहरे को, और फिर वो सब कुछ समझ गया। सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी वंशिका ही थी, और वंशिका अपना गला थामे हुए उसे नाराज नजरों से घूर रही थी। वहीं अब सब लड़के भी हैरान नजरों से वंशिका को ही देखने रहे थे और सभी हक्के बक्के रह गए थे। कोई कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं था। वहीं आहान तो जल्दबाजी में वंशिका के पास चला आया और ये सब देखकर उसकी आंखों में हैरानी की चमक उभरी और उसने एकदम से वंशिका से सवाल किया, वंशिका भाभी, वो आप ही थीं जो लड़के के वेश में थीं। इंटरेस्टिंग। लेकिन आपने इतनी जल्दी डोले शोले कैसे बना लिए? इतने तो मेरे भी नहीं है, मैं तो रोज जिम जाता हूँ फिर भी मेरी बॉडी ऐसे नहीं बन पाती, और आपने तो एक ही दिन में अरमान भाई से भी ज्यादा मस्कुलर बॉडी बना ली। वंशिका, जो थोड़ी देर पहले ध्रुव के गुस्से से घबराई हुई नजर आ रही थी, अब आहान का सवाल सुनकर वो थोड़ा मुस्कुराई और हिचकिचाते हुए बोली, वो देवर जी, ये डोले शोले मैंने बनाए नहीं हैं बल्कि खरीदे हैं। इतना कहकर वंशिका ने अपने दोनों हाथों पर से भारी भरकम बॉडी बिल्डर जैसे नकली बाजू निकाल दिए और फिर एक बार फिर सबके सामने वही पुरानी गोरी मजबूत और मुलायम सी वंशिका खड़ी थी। अब तो दादाजी ये नज़ारा देखकर एकदम से ठहाका लगाकर हंस दिए थे। वहीं अब नानी माँ भी भागती हुई वॉशरूम की ओर चली गईं और वहां जाकर उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा अच्छी तरह से साफ किया। फिर सबकी नज़रों को अनदेखा करके दादाजी के पास आकर खड़ी हो गईं और फिर हिचकिचाते हुए बोली, भाई साहब, इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा उदासी से भरा हुआ था और सारे लड़के भी कहीं ना कहीं अपने अपने काम पर जाने वाले थे। तब रश्मि बिटिया ने हमें बताया कि सब रात को 12 बजे के बाद ही घर आएंगे, तो इसीलिए हमें लगा कि लड़कियों को लेकर थोड़ी बहुत रस्में भी पूरी कर ली जाएं और बच्चों को भी थोड़ी मौज मस्ती करने का मौका मिल जाएगा और सबके चेहरे की उदासी कुछ कम हो जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस उदासी को दूर करने के चक्कर में हम आप लोगों को इतना परेशान कर बैठेंगे। नानी की आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। नानी माँ की बात सुनकर अब सब लोग एक दूसरे की ओर अविश्वास से देखने लगे थे। जैसे ही नानी माँ ने सहमी हुई आवाज में सारी सिचुएशन समझाई, वैसे ही दादाजी की आईब्रो आपस में सिकुड़ गईं। वो तुरंत बोले, ये आप कैसी बातें कर रही हैं बहन जी, गलती आप लोगों की नहीं है, गलती समय की है, ये सब समय का खेल है। लेकिन असल में गलती हम सबसे भी हुई है, क्योंकि हम सब ने ही एक दूसरे के लिए गलत समझ लिया था। वहीं अब तक अरमान के कमरे का पूरा कबाड़ा बन चुका था। आस्था ने अरमान की ओर चुपके से देखा। उसने नोटिस किया कि अरमान इस वक्त अपने पूरे कमरे के एक एक कोने को अपनी गहरी नजरों से चेक कर रहा था। आस्था उसके दिल का हाल समझ गई कि उसे इस वक्त बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, इसीलिए उसने तुरंत अरमान के गुस्से को भांप कर कहा, देखिए अरमान जी, हमें पता है कि इस वक्त आपको अपना रूम बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ लग रहा होगा, लेकिन प्लीज बस हमें 15 मिनट दीजिए। सिर्फ 15 मिनट में हम सब मिलकर सारी साफ सफाई कर देंगे। बस 15 मिनट में हम आपका कमरा पहले जैसा कर देंगे। प्लीज प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। इतना कहने के बाद आस्था चुप हो गई और कुछ पल सोचते हुए उसने मौके का फायदा उठाने के लिए अंश को गोद में उठाया और तुरंत ही अरमान की गोद में थमा दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि अरमान किसी भी पल बम की तरह फट सकता है, तो इससे अच्छा है कि उसे पहले से ही उसके गुस्से को थोड़ा शांत कर लिया जाए। इसीलिए उसने अंश का सहारा लिया और उसे अरमान की गोद में डाल दिया। अब जैसे ही अंश अपने पिता की गोद में आया, वो तुरंत ही मुस्कुरा उठा। अपने बेटे की मीठी सी मुस्कुराहट देखकर अरमान का चेहरा भी एकदम से बदल गया और वो हल्का सा मुस्कुराया। अरमान को मुस्कुराते हुए देखकर कहीं ना कहीं सभी ने राहत की सांस ली। ऐसा लगने लगा जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आकर थम गया हो और उन्हें अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल लगने लगा था। फिर आस्था की मदद करने के बाद धीरे धीरे एक एक कपल्स अपनी अपनी बीवियों को लेकर अलग अलग कमरों में जाने लगे। वहीं रौनक आंखों ही आंखों में आहान को मना रही थी। आहान ने उसे अनदेखा करके मुंह बनाया और नानी माँ की ओर देखकर हल्की नाराजगी जताई। उफ़ो नानी माँ, ये क्या बात हुई, अगर आपको कोई फंक्शन करना ही था तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? अरे मैं तो इस फंक्शन में 4 चांद लगा देता, आपको पता है कि मैं कितना बेहतरीन डांसर हूँ, मैं जब भी डांस करता हूँ तो लोग मेरे दीवाने हो जाते हैं। तभी ध्रुव ने मौके का फायदा उठाते हुए उसकी चुटकी ली। हाँ हाँ नानी माँ, रियली आपको पता है इसके डांस से प्रेरित होकर कोई आए ना आए, लेकिन गली के कुत्ते जरूर इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही ध्रुव ने ये कहा तो वैसे ही ये सुनकर सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। अगले ही पल आहान ने मुंह फुलाते हुए बेमन से ध्रुव को देखा और मुंह बनाते हुए उसे आंखों ही आंखों में धमकाने लगा। कहीं ना कहीं नानी माँ और दादाजी ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा और सहमति में अपनी पलकें झपका दी और दोनों की ही आंखों में आज एक सुकून था और अब सभी बच्चों की बातें सुनकर उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। चलो घर का माहौल कुछ तो ठीक हुआ, क्योंकि जिस तरह से अंश की किडनैपिंग हुई, ऊपर से वसुंधरा और वीर का मेंशन में आ जाना, घर के ही नौकर राजेश का कल्प्रिट निकलना और विवेक का इन सब में शामिल होना, इन सारे हादसों ने सबको बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। हर कोई कहीं ना कहीं अपनी ही सोच में परेशान था। कोई भी नहीं चाहता था कि मायूसी का ये साया पूरे घर में बना रहे। फाइनली घर का पूरा माहौल शोर और खुशियों से भरा हुआ था। वहीं अंश, जो इस वक्त अपने पिता की गोद में था, वो बार बार मुस्कुरा रहा था और मन ही मन जैसे वो कुछ सोच रहा हो। मेरी चुलबुली मम्मा खुद तो बच गई और मुझे डेविल किंग की गोद में थमा दिया। पता नहीं ये 15 मिनट में वाकई कमरा ठीक कर पाएंगे या नहीं, और कब तक मुझे इन्हें स्माइल करते हुए शांत करवाना पड़ेगा। ओह मम्मा, ये क्या किया आपने, ये सोचते हुए कहीं ना कहीं अंश मुंह बना बनाकर हंस रहा था। वही अरमान जब भी अपने बेटे को मुस्कुराते हुए देखता, उसका गुस्सा खुद ब खुद गायब हो जाता। वो बहुत ही प्यार से उसे निहार रहा था और फिर धीरे धीरे उसके गालों को सहलाने लगा। फिलहाल वो अंश को लेकर हॉल में आ गया था और सभी लेडीज आस्था की मदद करवाने के बाद सीधा अपने अपने कमरों में वापस चली गई थी। वहीं सुमित राधिका को बड़े ही जुनून भरी नजरों से देखे जा रहा था। उस पल जब उसे राधिका कहीं दिखाई नहीं दी तो उसे ऐसा लगने लगा मानो कि जैसे उसकी जिंदगी में से उसका सुकून कहीं गायब हो गया है। अब राधिका के कमरे में आते ही उसने उसे झट से गले से लगा लिया था और एकदम से सुमित की आंखें इमोशन से भर आई थी। अब अपने हार्टलेस पति सुमित की आंखों में आंसू देखकर राधिका थोड़ा सा सकपका गई और तुरंत उसकी छाती पर सिर रखकर उसकी आंखों में झांकते हुए दबी हुई आवाज में बोली, क्या हुआ पतिदेव, इतनी ज्यादा इमोशनल क्यों हो रहे हो आप? हाँ। तब एक बार फिर सुमित ने राधिका को कसकर गले से लगाया और उसके बालों को चूमते हुए बेचैनी से कहा, तुम्हें पता है आज जब तुम मुझे कहीं नहीं मिली, इनफैक्ट कोई भी लेडीज नहीं मिली, तो तुम नहीं जानती कि हम सब पर क्या गुजर रही थी।
हम सबको ऐसा लगने लगा था कि शायद हमारे किसी दुश्मनों ने तुम लोगों को अगवा कर लिया है। तुम सोच भी नहीं सकती कि उस पल मैं कैसा महसूस कर रहा था। अब सुमित की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार देखकर और उसका इतना प्यार पाकर राधिका अपने पंजों के बल खड़े होकर उसके माथे को चूम लेती है, फिर बात संभालते हुए एकदम से बोली, ओह हेलो मिस्टर हॉट पतिदेव, आपको इस तरह से सेंटी होने की कोई इजाज़त नहीं है, ओके? और वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, सिर्फ मौत के अलावा। ऐसा कहकर उसने एक बार फिर सुमित को गले से लगा लिया था और सुमित बड़े ही प्यार से राधिका को अपनी बाहों में सिमटने लगा। वहीं दूसरी ओर आहान का मुंह इस वक्त बच्चों के जैसा फूला हुआ था। रौनक को गोद में उठाकर वो अपने कमरे में तो आ गया था, लेकिन उसका मुंह अभी फूला हुआ था। अब अगले ही पल रौनक मुंह बनाते हुए उसकी तरफ बड़े ही ताज्जुब से देखकर बोली, क्या हुआ, ऐसे इस तरह से मुंह क्यों बना रखा है तुमने? हाँ। उसकी बात सुनते ही आहान मुंह फुलाते हुए जल्दी से बोला, ओके, मैं मानता हूं कि मैं वहां पर इन्वाइटेड नहीं था, लेकिन मैं तो तुम्हारा पति हूं ना, तो कम से कम तुम्हें मुझे थोड़ी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी। तुमने अकेले ही गोद भराई कर ली, वो बच्चा मेरा भी है ना, मुझे इस खुशी को महसूस करना था, उन यादों को तस्वीरों में समेटना था। उसकी बात सुनकर रौनक ने अपने सर पर हाथ मार लिया था और वो परेशान होकर मन ही मन बुदबुदाई, लगता है मैंने किसी बच्चे से ही शादी कर ली है, अब इसे मैं कैसे मनाऊं भगवान। फिलहाल रौनक तुरंत उठ खड़ी हुई और आहान के हाथों को हटाकर उसकी गोद में बैठते हुए नटखट अंदाज में बोली, ओ तो तुम्हें भी गोद भराई की रस्म करनी है ना, लो मैं तुम्हारी गोद में बैठ गई हूं, अब तुम कर लो रस्म। जैसे ही रौनक ने मस्ती भरे अंदाज में ये कहा तो वैसे ही आहान तो पूरी तरह से खिल उठा और तुरंत ही उसकी लाल चुनरी को उसके माथे पर अच्छी तरह से एडजस्ट करते हुए बोला, वैसे तुम आज वाकई में बहुत कमाल की लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है। अब ये बोलकर वो झुकने लगा था और रौनक अंदर ही अंदर सिमट कर रह गई थी। वहीं दूसरी ओर क्योंकि वंशिका का अब भेद खुल चुका था तो वंशिका ने जल्दीबाजी में आस्था के कमरे ही कपड़े चेंज कर लिया था। हालांकि नानी माँ ने उसके लिए भी बाकी सभी लड़कियों के जैसे ही कपड़े चुने थे, लेकिन फिलहाल वो लड़कों के आउटफिट में थी तो इसलिए उसने वो कपड़े अब तक नहीं पहने थे। लेकिन अब उसने सोचा कि क्यों ना वो भी वही कपड़े पहने जो बाकी सबने पहने थे, तो ये सोचकर उसने भी पचरंगी लहंगा चुनरी पहन लिया था और जैसे ही वो तैयार होकर बाहर आई तो वैसे ही ध्रुव बिना पलक छपकाए उसे ताड़ता रहा और उसे चुपके से फ्लाइंग किस दे दी। वहीं आस्था के चेहरे पर आज काफी वक्त बाद सुकून भरी मुस्कुराहट थी। कमरा वगैरह क्लीन करने के बाद आस्था इस वक्त अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। हालांकि अरमान स्वाभाविक रूप से उसके साथ था। नानी माँ भी आराम करने के लिए चली गई थीं क्योंकि रात काफी हो गई थी, इसलिए आस्था थोड़ी देर आईने के सामने बैठी हुई कुछ सोच रही थी कि ये हमें क्या हो गया है, इतनी अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है, जबकि आज हमने अंश और बाकी सबके साथ कमरे में कितनी देर तक जमकर मौज मस्ती की, तब जाकर हमारे दिल को थोड़ा बहुत सुकून मिला, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे दिल में ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है। हो क्या राय हमारे साथ, जब से अंश हमारी जिंदगी में आया है तब से सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। हम अपनी जिंदगी में अपने बच्चे और अरमान जी का साथ पाकर बेहद खुश हैं, लेकिन फिर हमें अपने सीने पर कोई बोझ सा क्यों महसूस हो रहा है, ये सोचकर आस्था अब और ज्यादा बेचैन हो गई थी। आस्था को कहीं न कहीं अपनी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक से उसे इतना अजीब सा खालीपन क्यों महसूस हो रहा है। पता नहीं क्यों अभी भी आस्था को कोई अनजाना सा डर सता रहा था, मानो कि जैसे उससे कुछ छिनने वाला हो। ये सोचते हुए आस्था के होंठ अचानक ही कंपकपाने लगे थे। फिलहाल पूरा कमरा क्लीन होने के बाद आस्था ने अरमान को तुरंत ही उसके फोन पर नोटिफिकेशन छोड़ दिया था। अरमान, जो कि अंश के साथ हॉल में मौजूद था, आस्था का मैसेज मिलते ही उसने अपने कमरे की ओर जाने के बारे में सोचा, लेकिन एक बार फिर जैसे ही उसने अंश का चेहरा देखा तो अरमान एक बार फिर उसके चेहरे में खो गया और उसके साथ फिर से बेफिक्री खेलने लगा। अरमान अंश को लगातार देखे जा रहा था। अंश का मुस्कुराना, उसकी टिमटिमाती हुई आंखें, उसके चेहरे के हाव भाव उसके दिल को कुछ अलग ही लेवल का सुकून दे रहे थे। आस्था ने अरमान को लगातार कितने ही मैसेज छोड़ दिए थे कि वो अंश को लेकर कमरे में वापस आ जाए, लेकिन अरमान तो अपने बच्चे के साथ इस तरह से बिजी हो गया था मानो जैसे उसे आसपास की दुनिया का कोई होश ही ना हो। वहीं आस्था हक्की बक्की रह गई और वो बेचैन होकर सोचने लगी, आखिर मिस्टर सिंघानिया अब तक कहाँ रह गए हैं? अभी थोड़ी देर पहले तक तो इतना गुस्सा हो रहे थे, आराम भी करना चाहते थे, लेकिन अब तक वापस क्यों नहीं आए? ऑलरेडी रात के 12:30 बजने वाले हैं, कहाँ रह गए हमारे डेविल किंग? लगता है मुझे जाकर उन्हें ढूंढना पड़ेगा। ये सोचते हुए आस्था जैसे ही कमरे से बाहर आई और हॉल में अपनी नजरें दौड़ाई तो वैसे ही उसकी नजर ठीक अरमान और अंश पर पड़ी। अरमान लगातार अंश के सुंदर से गोल मटोल से चेहरे की ओर प्यार भरी नजरों से देखे जा रहा था, और अंश भी अपनी आंखों से अरमान की ओर ही टुकुर टुकुर देख रहा था और इधर उधर हिलने की कोशिश कर रहा था। वहीं अरमान को अंश के साथ देखकर आस्था के चेहरे पर अपने आप ही एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई, और कहीं ना कहीं उसे इस बात की खुशी भी थी कि जिस तरह से अरमान ने अंश पैदा होने पर बिहेव किया था उसके बाद वो अब पूरी तरह से बदल गया था। आपको क्या लगता है, क्या चल रहा था आस्था के दिमाग में और आगे क्या होगा इस कहानी में?